जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन जय यमुना तीरवन चारी जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
श्री हरिनाम। नाम संकीर्तन की जय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्ण। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अध्याय क्रमांक 26, जिसका शीर्षक है राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्लोक क्रमांक 23। कृपया मेरे पीछे दोहराइए।
सातम मुखम सुदती सुपनुराग भार व्रीड़ा विलंब विलसत्सितावलोकम नीलालकालिभिरुपस्कृतमुन्नसम्न स्वानां प्रदर्शय मनस्विनी वल्गुवाक्यम् सात्वं मुखं सुदति सुपवनुभारागभार व्रीडा विलंब विलसद्धसितावलोकम् नीलालकालभिरुपस्कृतमुन्नसम्न स्वानां प्रदर्शय मनस्विनी वल्गुवाक्यम् सातं मुखं सुदति सुपवनुरागभार व्रीडा विलंब विलसद् सीतावलोकम् नीलालकालिभिरुपस्कृतमुन्नसम्न स्वानां प्रदर्शय मनस्विनी वल्गुवाक्यम्। वीडावल्लम विलसत्सितावलोकम् स्वानां प्रदर्शय मनस्विनी वल्गुवाक्यम्। माताजी, शब्दार्थ सा वह तुम मेरी पत्नी त्वम तुम मुखम अपना मुंह सुदाति सुंदर दांतों वाली सुभ्रु सुंदर भुवों वाली अनुराग प्यार आसक्ति से भार बोझिल विरिडा लज्जा विलंब नीचे झुके विलसत चमकते हुए हसती हंसते हुए अवलोकम चितवन से नील नीले अलक बाल से युक्त अलिभि भोरों के समान उपस्कृतम इस प्रकार सुंदर बनकर उन्नसम उठी हुई उन्नत नाक से युक्त न मुझको स्वानाम तुम्हारा अपना प्रदर्शय दिखलाओ मनस्विनी हे सुंदर हे विचार मग्न सुंदरी वल्गुवाक्यम मीठो वचनों से। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे प्रिय, तुम अत्यंत सुंदर दांतों वाली हो। तुम अपने आकर्षक अंगों के कारण अत्यंत मनस्वी लगती हो। तुम अपना क्रोध त्याग कर मुझ पर कृपा करो और अत्यंत प्यार से तनिक मुस्कुराओ। जब मैं तुम्हारे सुंदर मुखमंडल की मुस्कान, तुम्हारे नीले रंग वाले बाल एवं तुम्हारी उन्नत नासिका को देखूंगा तथा तुम्हारे मीठे वचनों को सुनूंगा, तो तुम मुझे और भी सुंदर लगोगी और अपनी ओर आकृष्ट करती प्रतीत हो आओगी। तुम मेरी अत्यंत आदरणीय स्वामिनी हो। तात्पर्य, स्त्रैण पति अपनी पत्नी की बाह्य सुंदरता से आकृष्ट होकर उसका आज्ञाकारी दास बनना चाहता है। इसलिए श्रीपाद शंकराचार्य ने उपदेश दिया है कि हमें स्त्री के हार्ड मास से आकृष्ट नहीं होना चाहिए। इस संबंध में एक कहानी कही जाती है कि एक बार एक मनुष्य किसी स्त्री की सुंदरता पर आसक्त हो गया और इस तरह प्रेम दर्शाने लगा कि उस स्त्री ने उसे अपनी सुंदरता के सारे अवयवों को दिखाने की योजना बनाई। उस स्त्री ने उस मनुष्य से भेंट करने के लिए एक तिथि निश्चित की और उस दिन उसने जुलाब ले लिया, जिससे रात दिन वह केवल दस्त करती रही और सारा मल एक पात्र में संग्रह करती रही। दूसरी रात्रि को वो जब वह व्यक्ति उस स्त्री से मिलने आया तो वह उसे अत्यंत कुरूप तथा दुर्बल दिखी। अतः उस व्यक्ति ने पूछा कि वह स्त्री कहाँ है जिसके साथ उसकी नियुक्ति थी। इस पर उस स्त्री ने कहा कि मैं ही वह स्त्री हूँ। उस व्यक्ति को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका सौंदर्य उसके जुलाब लेने के कारण लुप्त हो चुका था, जिससे वह दिन रात दस्त करती रही। जब वह पुरुष उसे तर्क करने लगा तो उस स्त्री ने पुनः कहा कि वह सुंदर नहीं लग रही, क्योंकि उसकी सुंदरता के अवयव उससे विलग हो चुके हैं। जब उस पुरुष ने पूछा कि वे अवयव किस प्रकार विलग हो सके, तो स्त्री ने कहा, चलिए आपको दिखा दूं। उसने उसे मल तथा वमन से युक्त वह पात्र दिखाए। इस प्रकार मनुष्य को पता चला कि सुंदर स्त्री केवल रक्त, मल, मूत्र तथा इसी प्रकार से घृणित अवयवों से बनी हुई है। यह वास्तविकता है, किंतु मनुष्य मोहक सौंदर्य से आकृष्ट होकर माया का शिकार बनता रहता है। राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी से प्रार्थना की कि वह पूर्व सुंदरता को प्राप्त हो। वह उसे उसी प्रकार सचेष्ट कर रहा था जिस प्रकार जीवात्मा अपने मूल चेतना को जागृत करता है तो अत्यंत सुंदर होती है। रानी के समस्त सुंदर अंगों की तुलना कृष्ण भक्ति के सुंदर स्वरूप से की जा सकती है। जब मनुष्य मूल कृष्ण चेतना को लौटता है तो वह स्थिर हो जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सावरजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं भजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गरुते। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो सभी उपस्थित वैष्णव के चरणों में मेरा सादर प्रणाम, और मैं आपके आशीर्वादों की याचना करता हूँ जिससे मैं इस श्लोक के ऊपर कुछ बोल पाऊँ। तो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का अंतर यह है कि आध्यात्मिक जगत में एक ही पुरुष है और बाकी सब क्या है, प्रकृति। तो उसका ही उल्टा यहाँ पर होता है। तो आध्यात्मिक जगत में सिर्फ कृष्ण ही पुरुष है और बाकी सब क्या है, प्रकृति। लेकिन भौतिक जगत में जीव क्या समझता है कि मैं हूं पुरुष हूं और बाकी सब क्या है, प्रकृति। वो पुरुष रहे या स्त्री रहे, कोई भी रहे, वो लोग सोचते हैं कि क्या है कि हमारे अंदर पुरुष भाव है, हमें सब भोग करने की इच्छा। तो इसलिए हम देखते हैं कि आधुनिक जगत में लोगों को कैसा प्रकृति की तरफ आकर्षित करने का प्रयास करते। जैसा अभी मैंगो का सीजन चल रहा है, तो हम देखते कि मैंगो और एक स्त्री, इसका कुछ संबंध नहीं। लेकिन आप अगर मैंगो का डब्बा देखेंगे तो उसके ऊपर क्या होता है, एक स्त्री का फोटो होता है और उसके हाथ में मैंगो रहते। फिर लोग क्या होते थे, स्त्री से आकर्षित होकर फिर वो मैंगो को भी ले लेते। या उसकी अलग अभी ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट का और स्त्री का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन तभी भी देखते कि जो अभी विज्ञापन है उसमें वहां पर स्त्री रहती है वो ट्यूबलाइट के ऊपर, या इलेक्ट्रिकल स्विच है उसका और स्त्री का तो कुछ लेना देना नहीं। वहां पर भी वो क्या करते, एक स्त्री का फोटो लगा देते। और सबसे बड़ी बात है सीमेंट, अभी सीमेंट का और स्त्री का क्या लेना देना है। लेकिन अभी तभी भी देखेंगे कि बड़े बड़े सीमेंट के जो बैग रहते उसके ऊपर भी स्त्री का फोटो लगाते। तो इसलिए लोगों को लगता है कि मैं पुरुष हूं और ये प्रकृति है, मुझे भोग करना है। और उस प्रकार वो मछली कांटे में फंस जाती। तो इस प्रकार जो विज्ञापन कर रहे हैं उनको पता है कि किस प्रकार ये जो जीव है जो भगवान से विरक्त हो चुका है, वो जो खुद को पुरुष समझता है, वो हर स्त्री के प्रति आकर्षित होगा। इसलिए वो उसको आकर्षित करने के लिए ऐसे सब विज्ञापन करते हैं। तो हमें ये जो हमारी आसक्ति है उसे ऐसे प्रकृति या ऐसे चीज से नहीं करना है जिसका अस्तित्व टेम्पररी, माने क्या है, अचल है, अचल नहीं, अशाश्वत है। तो ऐसे वस्तुओं के प्रति हमें आकर्षित नहीं होना चाहिए। तो हमें आकर्षित होना चाहिए भगवान से, जो भगवान क्या है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो जो भगवान सच्चिदानंद के विग्रह है उनसे आकर्षित होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक जो कथा बताई गई उसमें जो विग्रह है वो किसका बना हुआ है, या विग्रह जो भी है व्यक्ति है वो किससे बनाया है, हार्ड और मांस और बाकी चीजों से। तो इसके उदाहरण में हम एक कथा बताएंगे, एक श्लोक है भागवत में, वो है रुक्मिणी जी का। तो रुक्मिणी को जब भगवान उनको उनकी चेष्टा करते हैं कि क्या आपने किससे शादी किया, मेरे जैसे जो डरता है और समुद्र में जाके रहता है इससे क्यों शादी किया आपने, अभी भी आपके पास समय है, आपने जो गलत निर्णय लिया था उसको आप सुधार सकते हैं, आप अभी भी शिशुपाल या दंतवक्र जो आपके लिए लालाए थे उनसे आप विवाह कर सकते। तो अब ऐसा जब रुक्मिणी सुनती है तो तो पूरे बेहोश होके गिर जाते हैं। अब जब वो होश में आते हैं तब उनका जो कथन है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो उसमें एक श्लोक वो बोलती है, त्वक्रम अश्रु मनख केश पितदंतरम मासाम स्थिर कर्तृद्वी कफ पित्त वातम जीव शव भजति कांत तिविर्मूढ़ा याते पदाम च मकरंद मति क्रति स्त्री। तो वो बोलते हैं, मैं इंग्लिश में बोलूंगा बाद में हिंदी में बताता हूँ। अ वुमन हु फेल्स टू रिलिश द फ्रेग्रेंस ऑफ द बॉडी ऑफ यूअर लोटस फीट बिकम्स टोटली बिफूल्ड एंड दस शी एक्सेप्ट्स एज हर हस्बैंड और लवर अ लिविंग कॉर्प्स कवर्ड विथ स्किन विस्कर्स नेल्स हेड हेयर बॉडी हेयर एंड फिल्ड विथ फ्लैश बोन्स ब्लड पैरासाइट्स फीसिस म्यूकस बाइल एंड ईयर। तो रुक्मिणी जी बता रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति या स्त्री जो पूरी तरह से मूर्ख हो चुकी है, वही स्त्री क्या करेगी, भगवान को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को अपना पति बोल के स्वीकार करेगी। और वो अन्य व्यक्ति का हाल कैसा है, वो व्यक्ति है एक मृत व्यक्ति, मृत शरीर है। लेकिन ये जो मृत व्यक्ति है उसको क्या किया गया है, उसको अच्छे से सजाया गया है, उसके ऊपर अच्छी त्वचा है, अच्छे नाखून है, अच्छे बाल है, अच्छे भुवियाँ हैं, अच्छे तरह से उसका पैकेज है। लेकिन इसके अंदर क्या भरा हुआ है, ये व्यक्ति के अंदर मांस अस्थि रक्त और उसके अंदर क्या है, पैरासाइट्स माने अन्य जीव भी है उसके अंदर, है ना। जब देखते हैं कि हमारा पेट खराब हो जाता है, किसी व्यक्ति के पेट के अंदर से भी कृमि बाहर आते, तो ये हमारा हाल। और उसके साथ कफ वात पित्त, ये तो सबको पता है, जो आयुर्वेद में जाते हैं सबको पता है कि मेरा कफ बढ़ गया है, वात बढ़ गया है, पित्त। तो इस प्रकार से जो शरीर बना हुआ है उससे व्यक्ति आकर्षित हो जाएगा। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसको पता है कि ये चीज़ों से मुझे आकर्षित नहीं होना है। जैसे गांव में हम देखते हैं कि जो चिड़िया वगैरह रहते हैं वो खेत में आकर बहुत अनाज वगैरह खा जाती, तो उसको डराने के लिए लोग क्या करते हैं, एक लकड़ी में उसके ऊपर एक मटका रखते और लकड़ी के ऊपर एक शर्ट डाल देते, तो जो चिड़िया देखती है उसको तो उसे लगता है कि ये असली व्यक्ति, और डर के मार के वहाँ पर आकर वो कुछ खाती नहीं। तो उसी प्रकार हम भी लोगों से आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन ये लोग जो आकर्षित हो रहे वो असली लोग नहीं। जो असली आकर्षण हमारे अंदर होना चाहिए वो भगवान के प्रति आकर्षण होना चाहिए, ना कि ये जो मराठी में उसको बुजगाना बोलते, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते। तो ऐसे ही लोगों से हमें आकर्षित नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राजा पुरंजन इतने मोह में गिर गए कि वो जो स्त्री है उसका वो गुणगान कर रही, वो क्या बोल रहे कि तुम्हारा नाक इतना सुंदर है कि ऐसी सुंदरता मैं कहाँ पर भी नहीं देख रहा, और आपकी जो मुस्कान है मुखमंडल की मुस्कान, और आपका रंग जो नीला है तुम्हारे उन्नत नासिका, ये सब वो झूठे प्रलोभन उसको उसके बारे में बता रहे। हालांकि ये स्त्री भी कितने दिन के लिए सुंदर रहेगी, और 10 साल के बाद तो सब नाक जो सीधा है वो भी टेढ़ा हो जाएगा, या जो मुखमंडल जो मुस्कान है उसमें भी झुरियाँ आ जाएंगी, जो बाल सुंदर है वो भी गिर जाएंगे। तो ये सुंदरता क्या है, अशाश्वत है। इसके मुँह में गिर कर व्यक्ति क्या करता है, असली सुंदरता को भूल जाता है। तो जो असली सुंदरता है वो है भगवान के अंदर। तो वो भगवान की जो सुंदरता है उसके बारे में भागवतम में 9वें स्कंध का ये श्लोक है, इसमें बताया असली सुंदरता। यस्याननम मकर कुंडल चारु कर्णे भाजरोत कपोल सुभगम
स्त्रविलासहासं नित्योत्सवं न ततु पृथिवी पिबन्त्यो नार्यो नरस्य मुदिता कुपिता निमेष। इसका ट्रांसलेशन है, कृष्णास फेस इज डेकोरेटेड विथ ऑर्नामेंट्स सच एज इयररिंग रिसेम्बलिंग शार्क्स, हिज इयर्स आर ब्यूटिफुल, हिज चीक्स ब्रिलियंट एंड हिज स्माइलिंग अट्रैक्टिव टू एवरीवन। Whoever sees Lord Krishna, Krishna sees a festival. His face and body are fully satisfying for everyone to see. But the devotees are angry at the Creator for the disturbance caused by the momentary blinking of their eyes. तो जो व्यक्ति किसी को देखना चाहता है, अगर सुंदर है तो उसकी आंखें बंद नहीं होती, वो आंखें खुले चकाचौंध हो जाते हैं, ऐसे बोलते लोग। तो जो असली चकाचौंध वाली जो व्यक्ति है वो है भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पर बताया गया है कि उनका जो आनंद है, जिन उनका जो मुख कमल है वो इतना सुंदर है कि उनके गाल के ऊपर उनके कान के जो कुंडल है उनका प्रतिबिंब बनता है, इतने वो सुंदर है। और उनका जो कपोल है वो भी एकदम बड़ा है, और उनका नाक भी एकदम सुंदर है। उनकी नाक का जो कंपेयर है वो क्या है, तिल, जो तिल सीसम सीड होता है उसके फूल के जैसा रहता है उनका नाक, इतना सुंदर उनका नाक है। तो ऐसे भगवान को देखने के बाद व्यक्ति के हृदय के अंदर क्या होता है, उत्सव निर्माण होता है, नित्योत्सव। तो हर समय उनके अंदर वो उत्सव होता है। तो ये जो असली सुंदरता है इसको व्यक्ति को पीना चाहिए, ना कि किसी अंदर जो सुशोभित दिखने वाले व्यक्ति है उसके प्रति हमें आकर्षित नहीं होना चाहिए। तो ऐसा अगर जब हम भगवान को देखेंगे तब हम सच में बोलेंगे कि मेरे मुझे भगवान ने पापनी पापनी क्या बोलती हाँ आईलिट्स तो इंग्लिश हो गए, हिंदी में पलक, भगवान ने पलक क्यों बनाई। तो अभी लोग तो क्या करते, भगवान के सामने आकर ही आंखें बंद कर देते, सब जगह आंखें खुले रहते, लेकिन जब भगवान के सामने आते तो जिनको देखना चाहिए उनको देखने के लिए आंखें बंद कर देते। तो इसलिए हमें जो देखने वाले भगवान है उनको ही देखना है, और जब हम आंखें बंद करते तो भी उनका भी उनका ही स्मरण होना चाहिए। जैसा हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी के प्रति आकर्षित हो जाता है तो उसे सपने में, जागृत अवस्था में, सब अवस्था में उसी व्यक्ति का स्मरण होते रहते हैं। उसे अगर फूल देखा तो व्यक्ति याद आता है, उसको अगर बादल देखे तो उसको वो व्यक्ति याद आता है। तो ऐसा भौतिक जो व्यक्ति आसक्त हो जाता है उसको उसी व्यक्ति का बार बार याद आता है। जैसे ऑफिस में भी आएगा तो भी वो कॉल करते रहेगा कि अभी आपने क्या किया, अभी आपने ये किया गया, वो किया गया, तो उस प्रकार उसका चित्त पूरी तरह से आकृष्ट हो जाता है। तो वैसा ही जो भगवान का भक्त है उसकी चेतना पूरी तरह से भगवान के लीला, उनके गुण, उनके रूप, इसमें ही पूरी तरह से मग्न हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि पुंडरीक विद्यानिधि है वो इतने महान भक्त थे और बड़े राजवेश में रहते थे, बड़े वो श्रीमंत व्यक्ति थे। जब उनका उनके दास उनको चामर से हवा डालते थे तो जब वो चामर के चामर या वजन से उनको हवा डालते थे तो वजन के अंदर जो मोर का पंख दिखते थे तो वो देखने के बाद उनको पूरा भगवान का स्मरण होता है, और वो इतने आवेश में जाते आ जाते हैं कि अपने कपड़े फाड़ने लगते हैं, उनको 10 लोग भी उनको संभाल नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति होती है शुद्ध भक्तों का, जब भी वो भौतिक चीज़ों को देखते हैं वो उसका कनेक्शन, उसका संबंध भगवान से लगा थे, और उस प्रकार वो भौतिक वस्तु में आकर्षित न होकर वो भगवान के ही ध्यान में लगे रहते। तो जो व्यक्ति सुंदर है उसको तो हम नाम नहीं रख सकते, हम उसको नहीं बोलेंगे कि क्या है तुम ना एक थैली हो, हाँ एक मलमूत्र की थैली हो, ऐसा नहीं बोलते। तो जो सुंदर है वो तो सुंदर ही है, लेकिन वो सुंदरता कहाँ से आ रही है, भगवान से आ रही है। तो उसको हमारा संपर्क हमें कराना चाहिए। तो जो भगवान के भक्त है वो ऐसे निराश नहीं बन जाते कि वो ना कुछ अच्छा खाते नहीं, कुछ अच्छा पहनते नहीं, कुछ अच्छा देखते नहीं, ऐसा नहीं। वो सब क्या करते हैं, भगवान को खिलाते हैं अच्छा, और उसका आस्वादन करके भगवान को सुंदरता से एकदम वो उनका श्रृंगार करते। हालांकि वो भक्त फटे हुए कपड़े पहने, लेकिन वो भगवान का श्रृंगार एकदम मन से कराए, तो वो भगवान की सुंदरता देखकर उसका हृदय तृप्त हो जाता है, और जो व्यक्ति भी भगवान को देखने आता है तो वो भी तृप्त होता है। लेकिन भौतिक जगत में अगर हम किसी को सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, लोग उससे द्वेष करेंगे। जो सुंदर व्यक्ति है वो खुद का सुंदरता रिलीज नहीं कर सकता, वो कितना भी सुंदर रहे लेकिन वो खुद को नहीं देख सकता, तो इसलिए हमें ऐसे प्रलोभन में नहीं गिरना चाहिए। तो भगवान की जो सुंदरता है वो इतनी मंत्रमुग्ध करने वाली है कि भगवान जब वृंदावन में एक बार खुद को देखते हैं तो बोलते हैं ये कौन है इतना सुंदर। तो इससे भगवान पूरे विमोहित हो जाते कि मेरे में क्या है जो भक्त जानना चाहते हैं। तो इसलिए एक श्लोक है मार्कंड ऋषि का, करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदम विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंद मनसा स्मरामि। तो भगवान छोटे बच्चे का रूप लेकर एक वट पत्र के ऊपर सोए हुए, पीपल का पेड़ का जो पत्ता है हम देखते हैं ना, वो पीपल के पत्ते के ऊपर भगवान सोए, और भगवान क्या कर रहे, अपने कर कमलों से अपना चरण कमल पकड़ कर अपने मुख कमल में डाल रहे और वो अपना पैर का अंगूठा चूस रहे। क्यों वो चूस रहे, क्योंकि भगवान को भी लालसा उत्पन्न हुई कि मेरे चरण कमल क्या है जो मेरे भक्त इतने आश्रय लेते हैं और इतने वो सुख प्राप्त करते हैं, तो मेरे को भी देखना है कि मेरे चरण में क्या है। और बड़े कृष्ण होकर ऐसा करेंगे तो लोग क्या करेंगे, सब हंसेंगे, लेकिन छोटा बच्चा अगर मुंह में पैर डालेगा तो कोई उसे कुछ बोलेगा। तो इसलिए भगवान छोटे रूप में अपने चरण अपने मुंह में डालकर वो टेस्ट कर रहे कि मेरे भक्तों को क्या उसमें रस मिल रहा है। तो ये है भगवान का भक्तों के साथ आदान प्रदान। तो यहाँ पर एक जो बताया प्रभुपाद जी ने बताया कि शंकराचार्य बोल रहे कि व्यक्ति को श्रीपाद शंकराचार्य ने उपदेश दिया है कि हमें स्त्री के हाड़ मांस से आकृष्ट नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ स्त्री नहीं, पुरुष का भी शरीर हाड़ मांस से बने, ऐसा नहीं कि हमारा शरीर किस अलग चीज से बने। तो स्त्री के लिए पुरुष क्या है, स्त्री है, और पुरुष के लिए स्त्री स्त्री। तो हमें ऐसे एक दूसरे से आकर्षित नहीं होना चाहिए जिसका शरीर हाड़ मांस से भरा। तो उसके अंतर्गत भज गोविंद में वो लिखते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशविहीनम जंतम तुंडम वृद्धो यति गृहीत्वा दंडम तदिपि न मुंचति आशापिंडम। द बॉडी हैज वीकंड, द हेड हैज टर्न्ड ग्रे, द माउथ हैज बिकम टूथलेस, द ओल्ड मैन मूव्स अबाउट विथ हिज स्टाफ, इवन देन ही डज नॉट गिव अप हिज बंडल ऑफ होप्स एंड डिजायर्स। तो हमारा शरीर वृद्ध हो जाएगा तो हम नम्र बन जाएंगे, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर भक्ति आ जाएगा, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हो, बुढ़ापे में लोगों का बॉडी शरीर एकदम शिथिल हो जाता है, दांत पूरे गिर जाते हैं और बाल सफ़ेद होते, और अभी तो बाल सफ़ेद होने के लिए बुढ़ापे की भी ज़रूरत नहीं, अभी तो बाल 20 साल में ही सफ़ेद होने चलोगे, है ना। और क्या बोले, और ये वृद्ध व्यक्ति डंडा लेकर घूम रहा है तभी भी उसको आशा है किसमें, कि ये स्त्री सुंदर है या व्यक्ति सुंदर है, इसमें वो व्यक्ति लगा हुआ रहते। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो प्रदेश है उसमें क्या करते हैं, वृद्ध व्यक्ति बड़े बड़े क्लब में जाते हैं, उधर उसका बड़ा फी रहता है, और वहाँ जाकर वो क्या देखता है, एक तरुण स्त्री नृत्य कर रही है उसको वो देखता है, और उससे वो अपनी लालसा पूरे करने का प्रयास करते। तो इसलिए हमारे अंदर ये जो वासना है ये हमारा शरीर वृद्ध होने से वृद्ध नहीं होने वाले, वो वृद्ध शरीर में तो और बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमें अभी से उसके ऊपर नियंत्रण लाना चाहिए। तो एक बार अकबर ने, हम ये स्टोरी सुनते हैं ना, अकबर को बोला गया कि बीरबल अकबर को बोलता है, अकबर बीरबल को बोलते हैं कि वृद्धावस्था में व्यक्ति के अंदर के काम वासना जाते होंगे,
तो बीरबल बोलते नहीं महाराज, ऐसा तो होता नहीं किसी के अंदर जाते। तो वो बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं, अभी वृद्ध व्यक्ति तो उसको क्या दिखाई देगा, वो क्या देखेगा। तो बोलते ठीक है चलिए। तो अकबर को बीरबल एक मृतासन व्यक्ति के पास लेके जाते, जो अभी थोड़े दिन में मरने वाले, ऐसे व्यक्ति के पास लेके जाते। उसकी आंखें बंद हो गई है, उसका शरीर एकदम दुर्बल हो गया है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। और जब वो व्यक्ति के पास जाते, बूढ़े व्यक्ति के पास, और उस समय बीरबल बोलते हैं कि हे वृद्ध पुरुष, यहाँ पर राजाधिराज महाराज, भारत के महाराज आए हैं आपको देखने के। तो व्यक्ति कुछ भी उसके प्रति अपना प्रतिसाद नहीं देता, लेकिन बीरबल बोलते हैं अभी आप रुकी, तो जो अकबर की कन्या या जो कन्या रहेगी उसको वो लेके आते। और वो जब चलती है उसके घूनों को आवाज आता है, तो वो ये व्यक्ति बूढ़ा व्यक्ति अपने आँख जो बंद थे उसको भी खोल के वो देखता है कि किसके घूंघरू बज रही। तो ये है भौतिक जगत का क्या है रिजल्ट निकाल, कि वृद्धावस्था में लोगों के अंदर की काम वासना नहीं जाती, लेकिन जो भगवान के भक्त है उनको ये काम वासना बिल्कुल छूती नहीं। जैसा हम देखते कि हरदास ठाकुर है, उनके सामने सबसे सुंदर स्त्री रात के 12 बजे घनघोर जंगल में जहाँ एकांत है, उस समय वो स्त्री उनको अपना शरीर अर्पण कर रही थी और भोग विलास के लिए उनको प्रार्थना कर रही थी। तभी भी ये भगवान के भक्ति में उनको इतना आस्वादन मिल रहा था कि उन्होंने ये स्त्री का भोग नहीं किया और उसको अपनी भक्ति से उसे क्या किया, भक्त बना दिया। तो ये भगवान के भक्तों के अंदर आने वाली शक्ति है। जब हम भगवान से आकर्षित हो जाएंगे तभी हम ये भौतिक जो आकर्षण है वो कैसे समाने, एक मिराज एक मृगजल, मृग तृष्णा, जैसा पूरा रेगिस्तान है और उसमें क्या होता है, जो सूर्य किरण है वो रेत पे चमकते तो लगता है पानी है वहां पर, और आप वहां पर भागते भागते जाएंगे पानी पीने के लिए और आप मुंह डालेंगे उसे, क्या होगा, तो अपने हमारे मुंह के अंदर से गरम गरम रेत आएगी। तो उसी प्रकार लोग इधर उधर भाग रहे सुंदर व्यक्ति के पीछे, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस ए वो, लेकिन बाद में क्या होता है 10 साल के बाद दूसरा मिस यूनिवर्स आ जाता है, मिस वर्ल्ड दूसरा आ जाता है। तो ये 1 साल का मिस यूनिवर्स है, लेकिन जो भगवान वो क्या है, वो भुवन सुंदर है, वो सबसे बड़े मिस्टर वर्ल्ड है, और कितने समय के लिए, वो शाश्वत समय के लिए। तो हमें आकर्षित ही होना है, तो ऐसे ही भगवान से हम आकर्षित हो जाना चाहिए। तो ये जो आकर्षण भगवान के प्रति हमें आना चाहिए वो हमारे बल पे तो आएगा नहीं, क्योंकि हमारे आंखें भगवान के बारे में जब गुणगान सुनते हैं हम कि भगवान पूरे राजाधिराज है, भगवान सब ब्रह्मांड के स्वामी है, तो हमारे आंखें बंद रह जाती। लेकिन हमारे आंखें कब खुलती, जब भोग वासना के ऑब्जेक्ट आ जाए तब आंखें पूरी खुल जाती। तो इसलिए हमारी आंखें खोलना चाहिए, तो हमारे एक गुरु की आवश्यकता है, जो क्या करते हैं, ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजना शलाज, तो हमारी आंखें हमारे जो गुरुवर्य है वो खोल देती, और वो हमारे आंखें खोलकर हमें भगवान के दर्शन कराते। तो जो भौतिक व्यक्ति जगत में घूमता है वो किस लिए घूमता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, भोग विलास के लिए इधर उधर वो घूमता है। लेकिन जो भगवान के भक्त है वो किस लिए घूमते हैं इस धरती पर, तो उसके बारे में ये श्लोक है, जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनं भूतानि भवानि जनादियस्य जनार्दनस्य। तो जो भगवान के भक्त जो इस धरातल पर घूम रहे हैं वो किस लिए घूम रहे हैं, तो यहाँ पर बताया गया, ओ माय लॉर्ड, ग्रेट फिलान्थ्रोपिक सोल्स travel on the earth on behalf of the Supreme Personality of Godhead to show compassion to the fallen souls who are adverse to the sense of subordination of the Lord. तो जो भगवान के भक्त है वो किस लिए घूम रहे हैं, ऐसे लोग जो भगवान से विमुख हो गए उनको भगवान की तरफ सम्मुख करने के लिए, इसीलिए ऐसी कृपा दृष्टि बरसाने के लिए भगवान के भक्त इस धरातल पर घूमते हैं। तो ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये भगवान के भक्तों का अगर हमें संग प्राप्त होगा तो हम जो भगवान से विमुख हो चुके हैं वो हम भगवान से सन्मुख हो जाएंगे, और भगवान से जब हमारा दृष्टिपात भगवान का हमारे ऊपर होगा। जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, गौरताई की जय, जगन्नाथ बुद्ध की जय। तो फिर हमें इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो तुकार हमारे बोलते हैं, बूढ़ती है जन न पाओगे डोड़ा, मनुनी कड़वड़ा ये तसे। तो तुकार महाराज बोल रहे हैं कि ये लोग भौतिक जगत में डूब रहे हैं, इसलिए मेरे अंदर दया आ रही है और मैं देख नहीं पा रहा हूँ उनको बचाने के लिए। तो हम बोलेंगे हम कहाँ डूब रहे हम तो अच्छे से घूम रहे इधर उधर, लेकिन हम किस में डूब रहे? इंद्रित्व का जो सागर है उसमें हम डूब रहे, तो हमको पता नहीं चल रहा। लेकिन वो साधु संतों को दिखता है कि ये क्या कर रहे, तो इसलिए उनके अंदर बहुत दया है और वो हमें बचाते हैं कि ये जो भौतिक दलदल है जिसमें आप जाएंगे और ज़्यादा हाथ पर हिलेंगे तो क्या होगा, और अंदर जाएंगे फिर कैंसर होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, थोड़ा सा इंद्रियोत्पत्ति और बाद में इतना पिटाई होता है कि यमलोक में भी जाने की जरूरत नहीं। आजकल आपको हॉस्पिटल में ही आधा वसूल कर देंगे, इधर से सुई डालेंगे, उधर से सुई डालेंगे, मुंह में पाइप डालेंगे, और घर वाले सब बाहर रहते और ये अंदर रहते, और उनको कुछ कंपैशन नहीं रहता, इसको दुख रहा है, कोई पूछता नहीं आपके मुंह में पैर डालने से पहले कि दुख रहा है क्या, वो तो जबरदस्ती डालते ही जाएंगे। तो ऐसा हमारा आजकल का हाल है, लोग हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं और हॉस्पिटल में उनका अंत होता है। तो इससे अगर हमें बचना है तो हमें उस समय भगवान को याद करना है, तो ये पूरा जीवन हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो ये अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें क्या करना चाहिए? वैष्णव का संगति प्राप्त करना चाहिए। तो अगर भगवान की सुंदरता को हमें जानना है, उसका महत्व हमें समझना है, तो हमें भक्तों का संग लेना चाहिए। तो इसीलिए तुकार महाराज जी एक अभंग लिखते हैं, उसको मैं बताकर विराम करूंगा। संताचे गावी प्रेमाचा सुकाळ, नाही तळमळ दुःख लेश, तेथे मी राहीन होऊनी याचक, घालतील भीक निजी मज। संतांची गावी वरो भांडवल, अवघा विठ्ठल धन वित्त, संतांचे भोजन अमृताचे पान, करती कीर्तन सर्व काळ, संतांचा उदिम उपदेशाचे पेठ, प्रेम सुख साठी घेती देती, तुका मने तेथे आनिक नाही परी, मनोनी भिकारी जालो त्यांचा। तो तुकाराम महाराज का बोल रहे, मुझे ऐसे वैष्णव का संगति दीजिए जहाँ पर सिर्फ प्रेम का ही वर्षा है, जो लोग प्रेम से भरे पड़े हैं भगवान के, ऐसे व्यक्तियों का मुझे संग दीजिए और उनके साथ मैं रहूँगा तो ये भौतिक जगत का दुख मुझे दुख नहीं लगेगा। अगर हम गरीब भी रहेंगे लेकिन हम वैष्णव के साथ रहेंगे तो हम अमीर लोगों से भी ज़्यादा खुश रहेंगे। नहीं तो अगर बहुत सारे अमीर लोगों के साथ लोग रहते लेकिन वो क्या रहते? दुखी रहते। ऐसा नहीं कि अमीर लोग बहुत सुखी, वो तो सबसे बड़े दुखी रहते। और क्या बोलते हैं, वैष्णव के संग में कैसा रहना चाहिए? याचक के भाव से रहना चाहिए, वहाँ दानी के रूप में नहीं रहना चाहिए वैष्णव के संग में। वैष्णव के संग में हमें याचक के भाव में रहना चाहिए, और उस अगर उस भाव में हम रहेंगे तो हमें भीख डालेंगे, वो लोग क्या करेंगे? अगर हम भिखारी के जैसा रहेंगे तो हमें भिक्षा मिलेगा, लेकिन वो भिक्षा क्या है? तो जो संतों का जो भांडवल है या उनका जो कैपिटल है वो क्या है? विठ्ठल नाम, अवगा विठ्ठल धनवित्त, उनका भांडवल भगवान है। तो अगर वो खुश होकर हमको देंगे तो क्या देंगे? भगवान ही देंगे। तो हम सुनते हैं ना, आमी तो कांगाला धाई पाछी पाछी, कृष्ण से तुमार कृष्ण के पार। वो जैसा भगवान भक्तों के होते हैं वही लोग हमें भक्त दे सकते। आमी तो कांगाल धाई तो पाछ पाछ, मैं भिखारी बनकर आपके पीछे पीछे भागूंगा। संतान से भोजन अमृत पान, करी कीर्तन सर्व का। तो जो संतों लोगों का जो उच्चिष्ट है वो अमृत के समान है, और वो क्या कर रहे, वो हर समय भगवान के नाम गान में लगे हुए। तो ये संत का लक्षण है। संतान सा उदीम उपदेशा चपेट, संत लोगों का एक ही कार्य है, वो लोगों को अच्छा उपदेश देते, जिससे व्यक्ति को क्या मिलेगा, प्रेम सुख साटी घीती बेटी, और उससे हमें भगवान का कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा। जैसा भौतिक जगत में कोई व्यक्ति शराबी बनना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ शराबी व्यक्ति का संग लेना पड़ेगा, उसमें सब कुछ हो जाता है। अगर किसी को बिगड़ना है तो बिगड़े हुए व्यक्ति के साथ रहो, आप एक दिन में बिगड़ जाएं। तो अगर किसी को सुधरना है तो सुधरने जो सुधरे हुए व्यक्ति है उनके साथ रहना चाहिए। तो अच्छे संतों के साथ अगर हम रहेंगे तो हमारे ऊपर अच्छे आचरण के द्वारा उनका जो उपदेश है उससे हम अच्छे बन पाएंगे। तो का मने ते थे आनी का नाही परी मनोरी भिकारी झालो त्यांचा, तो इसके अलावा मुझे कुछ मिलने वाला नहीं, जब मैं संतों के साथ रहूंगा तो कृष्ण प्रेम के सिवा कृष्ण प्रेम ही मुझे प्राप्त होगा, इसलिए मैं वहां पर भिखारी बनना चाहता हूँ। नहीं तो हम आजकल भिखारी बनते हैं, इतना एजुकेशन करने के बाद भी लोग जॉब के लिए भीख मांगते हैं, या इसके लिए भीख मांगते हैं, उसके लिए भीख मांगते हैं। तो इससे अच्छा क्या है, हम वैष्णव के शरण लेकर उनसे भीख मांगे, वो है कृष्ण प्रेम की। अगर ऐसा हमें प्राप्त होगा कृष्ण प्रेम, तो हम ये जो यहाँ पर बताया गया, जैसा पुरंजन महाराज ये स्त्री का गुणगान कर कर उसके पैर हाथ पैर पड़ रहे, वो हमारे ऊपर आएगा नहीं, वो स्थिति हमारे ऊपर आएगा नहीं। तो हम भगवान के जब शरण जाएंगे और उनका जो मुख मिले, तो उससे हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। तो भागवतम में ये श्लोक है, जब भगवान द्वारका से लौटते उस समय का ये श्लोक है। अहो सनाथा भवता स्मयद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेम स्मिता स्निग्ध निरीक्षणानम् पश्येम तव रूप सर्वसौभगम्। तो जो द्वारका के लोग हैं, वो भगवान जब भगवान का हस्तिनापुर से लौट रहे, तब वो क्या बोल रहे, अहो सनाथा भवता स्मयद्, भगवान आपके विरह में हम अनाथ थे, लेकिन जैसे ही आप आए हैं तो क्या हुआ, हम सनाथ हो गए, और आपका रूप इतना दुर्लभ है, त्रैविष्ट पानाम भी दूरदर्शन, कि जो देवी देवता है उनको भी आपका दर्शन दुर्लभ है, लेकिन वो हमें सुलभता से प्राप्त हो रहा है, जैसा वृंदावन चंद्र का दर्शन हमें सुलभता से प्राप्त होता है रोज। और क्या बोले आगे, और भगवान का मुख कमल कैसा है, प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणान। तो स्निग्ध किसको बोला जाता है, जैसा दूध है उसका आगे का आइटम है दही, दही के बाद बनता है क्या, बनता है मक्खन। तो मक्खन सबसे स्निग्ध होता है, तो उस प्रकार जो दुनिया के जो भी स्मेल है वो तो कुछ दूध के जैसे भी नहीं, वो तो सब पानी है, लेकिन वो भी स्माइल में जो भगवान का जो स्माइल है वो सबसे स्निग्ध है। तो ऐसे ही भगवान के सुंदर मुकमल, उनकी जो स्निग्धता है, उनका जो कृपा दृष्टि, पश्चे में तौर सर्व, तो उसको हम देखकर क्या हुए है, सबसे भाग्यशाली बने। तो भगवान की जो स्माइल अगर हमारे ऊपर गिरती है तो हम सबसे बड़े भाग्यशाली है। तो वही जो भगवान का स्मित है उसके लिए हमें लालयत होना चाहिए, बाकी जो जो सब स्मित है वो थोड़े दिन के लिए है, ज़्यादा दिन वो स्मेल नहीं, तो वो सब प्लास्टिक स्मेल है, जब तक पैसे है तब तक स्मेल करेंगे, बाद में कोई स्मेल नहीं करता। तो इस प्रकार अगर हम भगवान की जो कृपा दृष्टि है उनका मुकमल है उसके प्रति आकर्षित हो जाएंगे, तो हमें बाकी अन्य भौतिक जगत के कुछ भी प्रलोभन हमें भक्ति से विचलित नहीं करेंगे। तो इतना कहकर मैं विराम दूंगा, कुछ मेरे से अपराध हो गए तो कृपा करके क्षमा कर दीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।